राधिका की जिद करने पर इशिका को सिंघानिया मेंशन आना ही पड़ा। थोड़ी देर पहले इशिका की दवाइयों को नक्श ने बदलवा दिया था। अभिमन्यु ने उन दवाइयों की फोरेंसिक जांच करवाई तो पता चला कि वो दवाइयां अबॉर्शन और इशिका की याददाश्त को भुलाने के लिए थी। वहीं इशिका भी अब खुद की सेफ्टी के लिए अवेयर हो चुकी थी, हालांकि उसे अभी भी यही लगता था कि ये सब एक गलतफहमी के चलते हुआ था। हड़बड़ाहट में उसने कुछ ज्यादा गौर भी नहीं किया था। इशिका के लिए दूसरी दवाइयां आ गई थी। इस बार दवाई लेने से पहले वो पूरी तरह सावधान थी। इशिका ने कुछ दवाइयों के नाम पढ़े तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए थे। इशिका ने सिर हिलाया और आंखें छोटी करके कहा, ये क्या मजाक लगा रखा है, वो अपने पेशेंट को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? पहले गलत दवाइयां भिजवा दी तो अब ये दवाइयां तो प्रेगनेंसी में ली जाती हैं। लगता है अब मुझे ही उनसे बात करनी होगी या अपना डॉक्टर चेंज करना होगा। इशिका ने दवाइयां को अपने हाथ में लिया और नीचे पहुंची। वो डॉक्टर के इस लापरवाही की वजह से काफी गुस्सा थी और इस बारे में दिशांक से बात करने के लिए बाहर गार्डन एरिया में जा रही थी। जल्दबाजी में इशिका राधिका से टकरा गई। राधिका ने उसे इतना हड़बड़ाते देखा तो तुरंत पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने रूम में सब कुछ अरेंज करवाया था, फिर इस तरह जल्दबाजी में कहाँ भाग रही हो? देखिए ना मिसेस सिन्हानिया, अस्पताल स्टाफ कितना केयरलेस है। पहले उन्होंने मुझे गलत दवाइयां भिजवा दी तो इतना कहने के बावजूद भी दवाइयां फिर से गलत भेज दी। ये सब मेडिसिन एक प्रेग्नेंट लेडी लेती है, मुझे इनकी क्या ज़रूरत है? नॉर्मल सप्लीमेंट और प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स में फ़र्क होता है। एक बार के लिए मैं ये भी सोच लेती कि ये सप्लीमेंट्स के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, इशिका ने गुस्से में जवाब दिया। राधिका ने मन ही मन राहत की सांस ली कि इशिका शक करने के बजाय अभी भी इस अस्पताल की लापरवाही समझ रही थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। राधिका जबरदस्ती मुस्कुराई और इशिका के हाथ से दवाइयां लेते हुए बोली, तुम्हें मेडिसिन की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। खैर, मैं डॉक्टर चेंज करने के बारे में सोच रही थी। हम यहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल में कल तुम्हारे सारे टेस्ट वापस करवाएंगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल राजवंश एम्पायर का एक फर्म था, ऐसे में वहाँ किसी तरह की गड़बड़ होने का डर नहीं था। इशिका ने उनकी बात पर हामी भरी। राधिका और इशिका बात कर ही रहे थे कि इस बीच केशव और अभिमन्यु वहाँ पर पहुँचे। राधिका ने बिजनेस का बोलकर उन दोनों को डिनर पर इन्वाइट किया था। राधिका यही चाहती थी कि इशिका और अभिमन्यु एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, ताकि इशिका को अभिमन्यु से जुड़ी हुई पुरानी बातें याद आने लगें। केशव के आने के बारे में इशिका जानती थी, लेकिन अभिमन्यु को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। मिस्टर राजवंश, आप यहाँ? सुबह भी आप अचानक मेरे घर पर पहुँच गए थे, मुझे पूछने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरी दवाइयाँ बदली गई हैं? इशिका ने हैरत भरे लहजे में पूछा। क्योंकि मेरे पास अस्पताल से कॉल आया था, उन्होंने अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज किया और साथ ही मेडिसिन ना लेने के लिए कहा था, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो पहले से ही इस तरह की स्थिति के लिए तैयार होकर आया था। भले ही इशिका पिछले कुछ सालों की यादें भूल गई हो, लेकिन वो काफ़ी स्मार्ट थी। इशिका को भी अभिमन्यु की बात पर यकीन हो गया था। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट मुझे या दिशांक को कॉल कर सकते थे। उन्होंने मिसेस सिन्हानिया को भी कॉल नहीं किया, उसके बजाय आपको कॉल करना क्यों ज़रूरी समझा? पेशेंट के रिलेटिव में आपका नाम नहीं था, इशिका बोली। हॉस्पिटल के डॉक्टर को मैं पहले से जानता हूँ, अभिमन्यु बोला। उन दोनों के बीच काफ़ी सीधे सीधे बात हो रही थी। अगर अभिमन्यु थोड़ा सा भी घबराता या रुककर जवाब देता तो शायद इशिका को शक हो सकता था। चलिए फिर, अच्छा है कि आप वहाँ के डॉक्टर को पहले से जानते हैं। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार मुझे गलत दवाइयाँ भेजी। पिछली बार की मेडिसिन के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेडिसिन भिजवाई थी। शायद उन्हें किसी तरह की गलतफहमी हो गई होगी, इशिका ने हल्के शिकायती लहजे में कहा। इशिका के मुंह से प्रेगनेंसी का जिक्र सुनकर वहाँ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। अभिमन्यु ने राधिका की तरफ देखा। राधिका ने आंखों ही आंखों में सब सही होने का आश्वासन दिया। इससे पहले कि इशिका अभिमन्यु से कोई और शिकायत करती, राधिका बोली, वैसे इशिका, ये हमारी गेस्ट हैं और डिनर के लिए आए हैं। अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो हम साथ में डिनर लें। इशिका ने जवाब में हल्के से हाँ में गर्दन हिला दी थी। इशिका अभिमन्यु के साथ थोड़ा बहुत बात तो कर रही थी, लेकिन केशव की तरफ तो वो देख भी नहीं रही थी। केशव को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। बहुत मुश्किल से उन्हें उनकी बेटी वापस मिली थी और आज फिर वो उसके लिए अजनबी बन गए थे। इशिका हेल्प का बोलकर किचन एरिया में चली गई थी। वहीं राधिका ने महसूस किया कि केशव की आंखों में नमी उतर आई है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा केशव, मैंने इशिका के आपके यहाँ रुकने के बारे में बहाना बना दिया है। समझ नहीं आ रहा सिचुएशन इतनी क्रिटिकल क्यों होती जा रही है। इशिका बार बार आदर्श और आयशा का नाम लेती है। उसे मालविका का डर लगता है और मुझसे ऐसे बर्ताव करती है जैसे मैं उसकी मालकिन हूँ। मैंने कभी उसके ऊपर मालविका की बेटी होने का गुस्सा नहीं निकाला, फिर भी उसके मन में ये फॉर्मेलिटी और झिझक क्यों है, राधिका ने भारी आवाज में कहा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और उन्हें सब बताते हुए बोला, क्योंकि मालविका ने हमेशा उससे यही कहा था कि उसके इस दुनिया में आने के बाद आपकी और मिस्टर सिंघानिया की शादी खराब हो गई थी। उसे देखकर आपका मूड अपसेट हो जाता है। आपकी बीमारी की वजह भी उसने इशिका को ही बताया था। अभिमन्यु इशिका से जुड़ी सभी बातों को जानता था। इशिका ने इस बारे में पहले उन्हें नहीं बताया, अब सच जानकर केशव और राधिका दोनों को बुरा लग रहा था। अभिमन्यु के दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे इशिका को धीरे धीरे पुरानी स्थिति में वापस लेकर आया जाए। अचानक उसे कुछ सूझा तो उसने केशव से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप जानते हैं मालविका कहाँ है? अगर वो जाकर इशिका से बात करे और कहे कि इशिका राधिका जी की बेटी है, तो कम से कम इन दोनों का रिश्ता ठीक हो सकता है। मुझे उस पर यकीन नहीं है, दूसरा वो पूरी तरह पागल हो चुकी है, केशव ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। उनकी बातों का सिलसिला तब टूटा जब इशिका उन्हें डिनर का बोलने के लिए आई थी। कुछ ही देर में वो डाइनिंग टेबल पर थे और साथ ही सब कुछ नॉर्मल होने का दिखावा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमान राजवंश मेंशन लौट आया था। उसकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आकाश सब कुछ ग्रैंड तरीके से करवा रहा था, इसीलिए एक हफ्ते पहले से ही राजवंश विला को सजाया जा रहा था। उन सबको देखकर अभिमान का मन कड़वाहट से भर आया था। सिर्फ एक शख्स था जो मेरे सपोर्ट में कुछ बोल सकता था, लेकिन इशिका की वजह से चाचू भी परेशान है। अब तक मैं उस लड़की को भी नहीं ढूंढ पाया जिससे मिस्टर राजवंश शादी करने वाले थे। ऊपर से आशिका को भी बेवजह मुसीबत में डाल दिया। मिस्टर सिंघानिया सही कहते हैं, मैं जिसकी भी जिंदगी में जाता हूँ उसे बर्बाद कर देता हूँ, अभिमान ने मन ही मन कहा। वो काफी परेशान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बचपन की तरह उसकी लाइफ को फिर से कंट्रोल किया जा रहा था। ना वो आकाश के सामने कुछ बोल सकता था और ना ही अपने और आशी की शादी को रोक पा रहा था। अभिमान अपने कमरे में जा रहा था कि तभी उसे आकाश किसी से कॉल पर बात करता हुआ सुनाई दिया। आकाश काफी गुस्से में लग रहा था, इसका मतलब कुछ बुरा हुआ था। अभिमान वहां रुककर चुपके से उनकी बातें सुनने लगा।
क्या कहा तुमने? तुमने उसे ढूंढ लिया और इतनी आसानी से जाने भी दिया? पागल हो गई हो तुम दोनों माँ बेटी? मैं कह रहा हूँ अगर मेरी शादी फिक्स नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें दिया हुआ समय खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये तो मैं अपने बेटे की शादी की वजह से चुप हूँ। समझ लो अभिमान की शादी जितना ही तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने बेटे को फोर्स किया था कि वो तुम्हारी बेटी से शादी कर सके, और अब तुम ये कह रही हो कि वो अचानक से आकर गायब हो गई? ऐसे तो तुम बहुत कहती हो कि वो लड़की तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे हाथ से आकर दूसरी बार निकली है। आकाश कॉल पर तृप्ति पर चिल्ला रहा था। अपने गुस्से को शांत कीजिए मिस्टर स्काई, आशिका अभी भी हमारे हाथ से निकली नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि आशिका कहाँ है, बस मैं उसे लाने नहीं जा सकती, तृप्ति ने शांत लहजे में कहा। उसने आकाश की मदद लेने का सोचा था कि आशिका फिर से उनके पास से भाग ना सके। तुम नहीं ला सकती, लेकिन मैं ला सकता हूँ, मुझे बताओ वो कहाँ है, आकाश बोला। तृप्ति ने गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर जवाब में कहा, आशिका कहीं और नहीं बल्कि आप ही के बेटे अभिमान राजवंश के कंपनी में काम कर रही है, वो अभिमान के पास है। अभिमान का नाम सुनते ही आकाश ने अपनी आंखें कसकर बंद की। उसने आंखें खोली तो अभिमान उसके सामने खड़ा हुआ था। आकाश ने जल्दी से कॉल कट कर दिया था। अभिमान नहीं जानता था कि वो जिस लड़की को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है ताकि अपनी शादी को रोक सके, वो पहले से ही अपने पास है। तो वहीं अब आशिका अभिमान के पास थी तो आकाश के लिए मुश्किल खड़ी हो रही थी कि वो कैसे अभिमान से आशिका की डिमांड करे। आकाश के चेहरे के जो भाव थे उससे साफ था कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। अभिमान के अब उसके साथ कोई इमोशन नहीं जुड़े हुए थे तो उसे उसकी हालत देखकर फिक्र भी नहीं हो रही थी। आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ होगा क्योंकि आप जैसे इंसान तो अच्छा होना डिजर्व भी नहीं करते हैं। खैर आपको बता दूं कि आप जो ये बड़ी बड़ी तैयारी करवा रहे हैं ये सब वेस्ट होने वाला है, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, अभिमान ने सिर हिलाकर कहा और वहां से जाने के लिए पलटा। स्काई के मन में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। वो मन ही मन बोला, मुझे आशिका चाहिए थी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तृप्ति की बेटी विहा की शादी अभिमान से होती है या नहीं, अगर मुझे आशिका के आगे किसी और की कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है, चलो अपने बेटे को भी खुश किया जाए और खुद को भी। अभिमान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पीछे से स्काई ने कहा, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, ठीक है मत करो, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मेरी एक चीज लौटाना पड़ेगी जो तुम्हारे पास है। अभिमान जो चाहता था वो उसे मिल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आकाश की कौन सी चीज अभिमान के पास है। अभिमान जल्दी से उसकी तरफ पलट गया था, वो आंखों में उलझन लिए उसे देख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ आशी घर लौट आई थी। तृप्ति के घर पर जो भी हुआ उसके बाद से आशी का मूड काफी अपसेट था। घर आकर उसने देखा काजल उसकी शादी से जुड़ी तैयारियों में लगी हुई थी। वैसे भी शादी होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था, अगले तीन दिनों में उनकी शादी की रस्में भी शुरू होने वाली थी। आशी को देखते ही काजल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई, अपने लिए एंगेजमेंट के रिंग सिलेक्ट कर लो। 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी अनाउंस होने के साथ ही एंगेजमेंट सेरेमनी रखी जाएगी। मॉम, मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ। आशी ने बहाना बनाया था कि वो अपने उतरे हुए चेहरे को सही कर सके। अपने कमरे में जाते हुए आशी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। इस 1 वीक में अगर वो आशिका बाहर ना आए तो मेरी और अभिमान की शादी हो जाएगी। उसके बाद सच सबके सामने भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आशी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी करके ये 1 हफ्ता सही से निकल जाए। अपने कमरे में आते ही आशी बेड पर पसर गई थी। उसने सिर पकड़कर कहा, अगर मेरी शादी अभिमान से हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लड़की वापस सिंघानिया फैमिली में आ जाए, मुझे बस अभिमान चाहिए। प्लीज 1 हफ्ता सही से निकाल दीजिए और इस आशिका सिंघानिया नाम की मुसीबत को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल फेंके। एक वो आशिका सिंघानिया है जिसकी शादी असल में अभिमन्यु से हुई है। वो आज तक नहीं आई, लेकिन इस फैमिली की बेटी आशिका सिंघानिया उठकर आ गई। न जाने इस दुनिया में कितनी आशिका सिंघानिया है जो मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है। आशी को अपनी फ्रस्ट्रेशन में कुछ रियलाइज हुआ। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो धीरे से बड़बड़ा कर बोली, कहीं आशिका सिंघानिया तो अभिमान की रियल वाइफ नहीं है।